श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे।
तुम बिना के दयालु जगत संसारे,
तुम बिना के दयालु जगत संसारे,
तुम बिना के दयालु जगत संसारे,
तुम बिना के दयालु जगत संसारे।
दया करो मोरे,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो।
पतित पावन हेतु तव अवतार,
पतित पावन हेतु तव अवतार,
पतित पावन हेतु तव अवतार,
पतित पावन प्रभु न पाई बेयार,
मोसम पतित प्रभु न पाई बेयार,
मोसम पतित प्रभु न पाई बेयार,
श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। कर्म रे आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी 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 बड़ दुखी कृपा वालो काना करो आमी बड़ दुखी कृपा वालो काना करो आमी बड़ दुखी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई 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 तव कृपा बोले पाई चैतन्य निताई तव कृपा बोले पाई चैतन्य निताई तव कृपा बोले पाई चैतन्य निताई कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे आहा स्वरूप सनातन दुपर गुनाथ हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ
आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ
महास्वरूप सनातन रूप रघुनाथ
आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ
आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ
पट युग जीव प्रभु लोकनाथ
भट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो
कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर
मोरे कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास
दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास
दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास
दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास
दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास
दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास
रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास
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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो
संसारे
पतित पावन हेतु तव अवतार पतित पावन
तव अवतार
उत्तम पतित प्रभु न पाई बेहार
उत्तम पतित
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णववंश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् अधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश कृपासिन्धुभ्यैवश पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आजानुलंबित भुजो कनकावदातु संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे प्रियो जगत करो करुणावतारो वंदे हम अनंत अद्भुतेश्वरम श्रीचैतन्य महाप्रभु नीचो अपि यत् प्रसादा भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। तो बहुत सुंदर कार्य आप सब लोगों के द्वारा यहाँ पर हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अभिषेक हम सब लोग ने किया। ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण अपने धाम से उतरकर इस पृथ्वी पर आए थे लीला करने के लिए। और कृष्ण के बड़े भाई जिसका नाम बलराम था, कृष्ण और बलराम, द्वापर युग के कृष्ण और बलराम कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तो अभी हम लोगों ने जो अभिषेक किया, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अभिषेक किया, ये कृष्ण और बलराम के ही स्वरूप है। शास्त्र में कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि यह अभिषेक करने से क्या फायदा होता है, अभिषेक का क्या महत्व है। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए भक्ति के 64 अंग का वर्णन करते हैं। उस भक्ति के 64 अंगों में 5 अंग मुख्य है और उस 5 अंगों में सबसे पहले है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, भगवान कृष्ण के नाम का जप करना, ये दूसरा अंग है। तीसरा अंग है भक्तों का संग करना। चौथा अंग है भगवान के धाम में वास करना। और भक्ति में पांचवा अंग है, पांचवा महाबल है, महासाधन है, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना। क्योंकि कलयुग में भगवान प्रकट नहीं होते हैं। कलयुग के पहले के युगों में द्वापर त्रेता या सतयुग में भगवान साक्षात आते थे, साक्षात सबके साथ बातचीत करते थे। परंतु कलयुग में भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। कलयुग में अर्च विग्रह ही भगवान का स्वरूप माना जाता है। श्रीमद् भागवतम में 8 प्रकार के अर्च विग्रह का वर्णन हुआ है। शैली दारू मई लोही लेपिया लेखिया च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टमा विध्या। 8 प्रकार के विग्रह होते हैं, 8 प्रकार की मूर्ति होती है और यह 8 प्रकार के विग्रह ही भगवान का स्वरूप माना जाता है। शैली का अर्थ होता है पत्थर से विग्रह बनता है, दारुमयी लकड़े से विग्रह बनता है, लोही धातु का विग्रह होता है, लेपिया लेप का चंदन इत्यादि लेप का विग्रह होता है, लेखिया अर्थात तस्वीर, जो फोटो हम हमारे घर पर रखते हैं मंदिर में। मनोमयी मणिमयी, मणियों का भगवान का विग्रह होता है, और मनोमयी मन में भी भगवान का विग्रह बनाकर उनकी पूजा की जा सकती है। कभी कभी जो गरीब लोग होते हैं, जिसके पास धन नहीं होता है, वे भगवान के अर्च विग्रह को खरीद नहीं सकते हैं, उनको बड़े बड़े भोग नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने मनोमयी विग्रह बनाने के लिए कहा। तो यहां पर हमने कृष्ण और बलराम, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अभिषेक किया, जो कलयुग में साक्षात अवतार है। और वेदों में कहा गया है, बहुत सुंदर अभिषेक की महिमा वेदों में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान का अभिषेक करता है तो भगवान का अभिषेक करने में जितनी बूंद, मान लीजिए आपने अभिषेक किया, उसमें कई बूंद होती हैं, और बूंद की भी बूंद को सीकर कहा जाता है। एक बूंद को आप हाथ में रखिए और इसे उड़ाइए तो उसके कई सैकड़ों हजारों छोटे 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 छोटी बूंदे बनती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु या भगवान के अर्च विग्रह का जो हम अभिषेक करते हैं, उस अभिषेक में जितनी बूंद होती है और बूंद की जितनी सीकर होती है, उतने सीकर वर्षों तक व्यक्ति को स्वर्ग लोक में वास मिलता है। अर्थात इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वो व्यक्ति स्वर्ग में वास करता है। खैर, ये तो एक भौतिक लाभ है, परंतु भगवान का अभिषेक करने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। अभिषेक करने की बात दूर रही, यदि कोई अपने आंखों से अभिषेक करते हुए देह दर्शन करता है, अभिषेक करने वाले का यदि कोई दर्शन कर ले तो उनके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। और दर्शन करने की भी बात दूर रही, कहीं पर अभिषेक हो रहा है, मान लीजिए मीरा रोड में यहां पर अभिषेक हो रहा है, कोई बोरीवली में बैठकर यह स्मरण करे कि मीरा रोड में अभिषेक हो रहा होगा, स्मरण करने मात्र से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। अभिषेक करने का स्मरण करने से इतना कुछ होता है, तो कोई अपने हाथ से यदि अभिषेक करे तो उनको कितना लाभ प्राप्त होता होगा। तो वास्तव में आज यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब लोग धन्य हैं। वास्तव में सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, जिनके कारण भगवान ने हम सबका अभिषेक ग्रहण किया। वास्तव में हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारी कोई लायकात नहीं है कि हम हमारे इस पापमय शरीर से, हमारे इस तुच्छ शरीर से भगवान का अभिषेक करें, परंतु वास्तव में भगवान भाव देखते हैं। इनमें से कई लोग होंगे जो इस चीज के ऊपर, इस कार्य के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते होंगे। कभी कभी कई लोगों को इस कार्य के ऊपर श्रद्धा नहीं होती है कि ये क्या भगवान को नहला रहे हैं। प्राय कभी कभी लोगों को यह भी भ्रम होता है कि ये क्या भगवान को भोग लगा रहे हैं, अभी 56 भोग लग रहा है। तो कई लोग जो नास्तिक हैं, जो पापी हैं, वो बोलते हैं कि भगवान तो कुछ खाने वाले हैं नहीं, कभी खाते तो नहीं है, तो क्यों आप रोज भगवान को भोग लगाते हो, क्यों अभिषेक लगाना, भोग करना, ये सब क्यों करते हो, भगवान स्वीकार तो करते हैं नहीं। क्योंकि देखते हैं कलयुग में 5 रोटी यदि भगवान को लगाई है तो जब वापस लेते हैं तो 5 की 5 ही रहती है, कम नहीं होती है। तो प्राय नास्तिक लोग यह तर्क करते हैं कि भगवान कुछ भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो क्यों आप लोग भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हो, भगवान को भोग लगाते हो। परंतु वास्तव में देखा जाए तो भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं, परंतु भगवान का ग्रहण करना एक अलग तरीके से होता है। भगवान ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से ग्रहण करते हैं जिससे उस भोग में कमी न हो। इसका पहला कारण यह है कि यदि कलयुग में भगवान खाने लगे मान लीजिए कोई 5-10 रोटी भगवान को लगाए और भगवान खाने लगे, तो कलयुग के लोग इतने लोभी हैं, इतने लोभी हैं, दूसरे दिन से भगवान को भोग लगाना बंद कर देंगे। अरे बाप रे बाप, ये तो खत्म कर देते हैं। तो पहले तो भगवान ने सोचा कि कलयुग में लोभी लोग हैं, तो उनके लिए मुझे कुछ बचाना होगा। ये पहला पॉइंट है। परंतु फिर भी भगवान ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? भगवान एक आध्यात्मिक तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, स्थूल नहीं है। तो भगवान उस भोग में रही हुई सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करते हैं। उस भोग में सूक्ष्म वस्तु है। जैसे मान लीजिए मैं आपको दृष्टांत दूं, कोई व्यक्ति जी रहा है और मान लीजिए वह मर गया, तो जब वह जी रहा था तब उसका वजन कीजिए, और जैसे ही 1 सेकंड के बाद वह मर गया फिर उसका वजन कीजिए, वजन में कुछ कमी होगी? कभी नहीं होगी। यद्यपि उस व्यक्ति के हृदय से आत्मा निकल गई, परंतु फिर भी उस व्यक्ति के स्थूल शरीर में कोई कमी नहीं होगी, वजन में कोई घटावा नहीं होगा। अच्छा ये छोड़िए, मान लीजिए आप यहां पर बैठे हो, आप में से यदि मन को निकाल दिया जाए तो क्या वजन कम हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मन एक सूक्ष्म वस्तु है। यदि शरीर से मन को निकाल दिया जाए फिर भी शरीर का वजन 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। और यद्यपि हम सोचते हैं, जितने भी विचार करते हैं मन में ही करते हैं, परंतु फिर भी मन एक सूक्ष्म वस्तु है, इसके लिए वह निकल भी जाए तो वजन कम नहीं होता है। स्थूल वस्तु में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उस भोग में स्थूल वस्तु भी होती है और सूक्ष्म वस्तु भी होती है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो सबसे पहले वह रोटी या सब्जी हम भगवान के सामने रखते हैं, और रोटी और सब्जी के साथ हमारा भाव भी उसमें होता है कि भगवान यह खाएंगे, जरूर भगवान आएंगे और इस भोग को ग्रहण करेंगे। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तब उसमें दो चीज होती है, एक तो स्थूल वस्तु वह रोटी और सब्जी, और एक सूक्ष्म वस्तु, और वह सूक्ष्म वस्तु है हमारा भाव। रोटी और सब्जी के साथ हमारा भाव भी हम उसमें रखते हैं और भगवान को लगाते हैं। तो होता क्या है, जब हम भगवान को रोटी और सब्जी भोग में लगाते हैं और भाव के साथ लगाते हैं तो भगवान आते हैं, आकर मंदिर में खड़े रहते हैं, और भगवान वह स्थूल चीज को नहीं खाते हैं, परंतु सूक्ष्म चीज जो हमारा भाव है उसे भगवान ग्रहण करते हैं और भाव को ग्रहण करके चले जाते हैं। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है भाव ग्रही जनार्दन, भगवान भाव ग्रहण करते हैं। तो यदि भाव से भगवान को कुछ भी भोग लगाया जाए तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान निश्चित रूप से भोग स्वीकार करते हैं। और मान लीजिए यदि भगवान न भी स्वीकार करते हो, फिर भी भगवान ने कहा है इसलिए हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं यत करोषि यद अश्नासी यत जोषि ददासी यत तपस्यासी कौन्तेय तत् पुरुष्य मत अर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो मुझे अर्पण करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति, मुझे पत्र पुष्प फल भोग मुझे अच्छे अच्छे व्यंजन लगाओ, और मैं उस यदि भक्ति से लगाओगे, भाव से लगाओगे तो मैं इसको ग्रहण करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान का दर्शन करना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब भगवान की भक्ति है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें यही कार्य करने हैं। भागवत में कहा गया है कि यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और दुर्लभ ही नहीं बहुत क्षण भंगुर है। यह मनुष्य जीवन 84 लाख के योनि के चक्कर काटने के बाद प्राप्त होता है, और मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी केवल 100 साल के लिए मिलता है। 100 साल भी कोई नहीं जीता है, 50-60 साल में व्यक्ति मर जाता है। तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन जो देवताओं की को भी दुर्लभ ये मनुष्य देह है, ये मनुष्य देह प्राप्त करके यदि कोई इस प्रकार से धर्म भजन और भक्ति नहीं करता है तो वह मनुष्य मनुष्य नहीं है, वह तो मनुष्य के रूप में पशु है। आहार निद्रा भय मैथु नमच सामान्य एतत् पशु भैर नराणा, क्योंकि भोजन करना, सोना, संभोग करना और डरना ये तो एक प्राणी भी करता है, कुत्ता भी यह कार्य कर लेता है, परंतु प्राणी भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति केवल मनुष्य कर सकते हैं और यह मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, भक्ति करके भगवान को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। परंतु दुर्भाग्य है हम लोगों का कि इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सुंदर मौका है यह मनुष्य शरीर। वास्तव में इस प्रकार से जब सिद्धांत कहे जाते हैं तो कोई समझते नहीं है, इसलिए कथा कहनी पड़ती है, एक उपदेश व्याख्यान करना पड़ता है। तो मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत सुंदर कथा है और इस कथा से बहुत बड़ा उपदेश प्राप्त होता है। एक बार एक राजा था, और राजा को तो आप जानते हो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र होता है, उसके सिर पर कोई किसी का हाथ नहीं, वे जो चाहे वह कर सकता है। तो वह राजा ऐलान किया कि यदि कोई व्यक्ति मेरे पास पहुंच जाए तो मैं उसे राजा बना दूंगा, मेरे जैसा राजा उसे बना दूंगा, उल्टा मैं उसकी सेवा करने लगूंगा। राजा ने बहुत बड़ा ढंढेरा पिटवाया, ऐलान किया पूरे संसार में कि यदि कोई व्यक्ति मेरे पास पहुंच जाए तो मैं उसे राजा बना दूंगा और मैं उसकी सेवा करने लगूंगा। तो राजा ने अगले दिन अपने सभी सैनिकों को बुलाकर एक ऐसा रास्ता बनवाया और वह रास्ता एक मील का रास्ता था, एक मील यानी 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, चाहे 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का लंबा रास्ता बनवाया। और राजा 3 किलोमीटर के बाद जब उस वह रास्ता का अंत होता है वहां पर बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर बैठ गए, और 3 किलोमीटर का रास्ता था और एक एक छोर पर, एक पॉइंट पर राजा बैठे, और 3 किलोमीटर जहां से रास्ता शुरू हो रहा था वहां पर राजा ने बहुत बड़ा गेट बनवाया, और गेट और राजा के बीच में 3 किलोमीटर का अंतर है, क्षमा कीजिए 1 कोस नहीं 10 कोस अर्थात 30 किलोमीटर का अंतर था, राजा और वह गेट के बीच में 30 किलोमीटर का अंतर। और फिर राजा ने उस गेट के पास एक बूथ लगवा दिया और बूथ के साथ साथ उस रास्ते में कई सारी दुकानें, कई सारी होटलें, कई सुंदर मोबाइल की दुकान, गाड़ी की दुकान, बंगले, कई सारी स्त्रियां नाच रही थी, गान कर रही थी, शराब की दुकान, बहुत कुछ रास्ते में राजा ने बनवा दिया। दूसरे दिन सुबह सभी लोगों को पता चला कि यह 30 किलोमीटर का रूट काट कर राजा के पास कोई पहुंच गया तो वह राजा बन जाएगा और राजा उसकी सेवा करेगा। परंतु राजा की एक शर्त थी, राजा की शर्त यह थी कि शाम नहीं होनी चाहिए, शाम के पहले जब उजाला है तब तक व्यक्ति मेरे पास पहुंच जाए, उजाला खत्म होने के बाद अंधेरे में या संध्या के बाद यदि कोई मेरे पास पहुंच भी जाए तो फिर मैं उसे राजा नहीं बनाऊंगा, संध्या के पहले मेरे पास पहुंचना है। तो दूसरे दिन हजारों हजारों लोगों को पता चला कि इस प्रकार से राजा बनना है आसान, 30 किलोमीटर चल के राजा बनेंगे। तो सब लोग आए, गेट के पास खड़े रहे, बहुत सुंदर राजा ने गेट बनाया था, गेट को निहारा, गेट से जैसे ही लोग अंदर एंट्री किए तो एंट्री करने के साथ ही वह बूथ वाले ने उसे रोक दिया और रोककर उसे एक टिकट दी, और टिकट के ऊपर लिखा था कि अभी आपको संध्या होने में अभी राजा के पास पहुंचने में इतना समय बाकी है, 4 घंटा लिख दिया 4 hours रिमेन, और टिकट दी और टिकट के साथ एक व्यक्ति को दिया कि यदि कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो राजा के पास पहुंचने में तो इसकी हेल्प ले लेना। एक टिकट दी, उस पर लिख दिया गया कि आपके पास इतना समय अभी बाकी है, और एक व्यक्ति को साथ में दिया गया और वह व्यक्ति निकला। वैसे कई सारे लोग टिकट और व्यक्ति को लेकर निकले। जैसे उस रास्ते में सभी लोगों के मन में था कि हमें राजा से मिलना है, जब गेट के पास खड़े थे तो सब लोग ये सोचकर अंदर आए कि राजा से मिलना है। जैसे ही गेट के अंदर आए, टिकट लेकर उस व्यक्ति के साथ जब एंट्री किए और धीरे 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 जैसे चलते गए तो राजा ने जो दुकानें बनाई थी, अरे यहाँ तो बहुत सुंदर होटल है, तो वह व्यक्ति होटल में जाकर बहुत सुंदर भोजन किया। फिर आगे चलता गया तो कुछ लोग शराब की दुकान में बैठ गए। रास्ते में कई स्त्रियां, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां गाने गा रही थी, नाच रही थी, तो कुछ लोग वहां पर बैठ गए। कुछ लोग आगे चलते गए तो वहां पर बहुत ही सुंदर टीवी फिल्म इत्यादि चल रहा था, तो कुछ लोग वहां पर बैठ गए। केवल 4 घंटा बाकी था, परंतु यह भोग और ऐश्वर्य में इतने फंस गए थे सब लोग वहां पर बैठ गए। कई एक दुकान पर बहुत सुंदर सुंदर मोबाइल गाड़ी इत्यादि मिल रहा था, तो कुछ लोग वहां पर खड़े रह गए कि यहाँ तो फ्री में मिल रहा है सब कुछ, चलो ले ले। तो इस प्रकार से हजारों लोग सुबह उस गेट के पास एंट्री किए, परंतु शाम हो गई पर राजा के पास एक व्यक्ति भी नहीं पहुंचा। कि सब लोग राजा ने जो बीच में जो भी दुकान इत्यादि बनाई थी वहां पर ही अटक गए और वहां पर ही फंस गए। राजा निराश हुआ, अरे बाप रे बाप, कोई आया ही नहीं यहां पर। 30 किलोमीटर दूर जाने की बात दूर रही, 10 किलोमीटर भी पार नहीं कर सके। 10 किलोमीटर में ही सब लोग अटक गए। एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी हजारों लोग आए, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। 3-4 दिन जब गुजर गया, 5वें दिन एक सन्यासी वहां पर आया, एक विरक्त साधु। जैसे ही सन्यासी आकर देखा, अरे सुंदर गेट है, चलो जाकर देखते हैं क्या है अंदर। अंदर आए तो रोक दिया उसे कि टिकट लेकर जाओ। टिकट में लिख दिया रिमेन 5 आवर, 5 घंटा आपके हाथ में है। ठीक है भाई, एक व्यक्ति को दे दिया, चलो इसके साथ जाओ अंदर। तो साधु तो सीधा सीधा 30 किलोमीटर चलते 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 चला चला, तो 2.25 घंटे में राजा के पास पहुंच गया। राजा के पास पहुंचकर राजा ने कहा धन्यवाद, राजा ने सत्कार किया और राजा ने उस व्यक्ति को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी? ताली बजी? ताली मत बजाइए, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो शुरू हुआ है। अब ये जो मैंने आपको कथा सुनाई, ये कोई राजा की कथा या कोई व्यक्तियों की कथा नहीं, ये हमारी ही कथा है। सबसे पहले ये राजा और कोई नहीं, ये राजा परमेश्वर परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ भगवान श्री कृष्ण है। जैसे राजा ने, आपने सुना, राजा ने कहा कि कोई व्यक्ति मेरे पास पहुंच जाए तो मैं उसे राजा बना दूंगा। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में या भागवत में या अपने उपदेशों में कहते हैं कि आप सब लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरी शरण ग्रहण करो। यदि आप मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें मेरा धाम प्रदान करूंगा और मेरे धाम में मेरे जैसा ही स्वरूप में तुम्हें दे दूंगा। तो राजा और कोई नहीं, भगवान है। और जैसे राजा ने वह गेट बनाया था, गेट से अंदर जैसे ही लोग आ रहे थे तो वह गेट से अंदर आना अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य जीवन धारण करना, यह गेट के अंदर आना। जैसे ही व्यक्ति गेट के अंदर आया, तुरंत उसे एक टिकट दी गई और क्या लिखा था, इतना घंटा बाकी है। जैसे ही हमें यह मनुष्य देह प्राप्त होता है, तुरंत हमें टिकट दी जाती है कि आपको 40 साल या 50 साल जीना है। ज्ञान रहे जन्म के साथ ही व्यक्ति अपनी मृत्यु की डेट लेकर आता है। और डेट की बात छोड़ दीजिए, भगवान का नियम इतना सूक्ष्म है, भगवान के नियम में ऐसा नहीं लिखा है कि यह व्यक्ति इतना साल जिएगा, यह भी नहीं लिखा होता है कि यह व्यक्ति इतना घंटा जिएगा। भगवान के हिसाब में ऐसा लिखा होता है कि यह व्यक्ति इतना सांस लेगा, इतने सांस तक व्यक्ति जिंदा रहेगा। बहुत सूक्ष्म है भगवान का नियम। तो जात से ही ध्रुव मृत्यु, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो मृत्यु साथ में ही होती है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। तो मृत्यु की तारीख साथ में ही मिल जाती है और साथ में एक व्यक्ति को दिया, जैसे रास्ते में एक व्यक्ति को दिया गया था, साथ में एक व्यक्ति को दिया जाता है और यह व्यक्ति और कोई नहीं, यह परम परमात्मा है। मनुष्य देह जब धारण करते हैं या जीव जब भगवान से विमुख होता है और यह भौतिक बंधनों में फंसता है, तो भौतिक शरीर में आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी होती है। हम सब के हृदय में भगवान विराजमान है। यदि हम चाहे तो भगवान से हेल्प ले सकते हैं, परंतु हम भगवान की ओर देखते तक नहीं है, इसलिए भगवान भी हमारे सामने केवल देखते रहते हैं। तो जैसे व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त किया, भगवान परमात्मा साथ में है और भगवान ने कहा है कि मेरे पास पहुंच जाओ तो मैं तुम्हें मेरे जैसा बना दूंगा, हम भी मनुष्य जीवन प्राप्त करके चलने लगे। तो जैसे वे लोग उस रास्ते में कहीं मोबाइल में, कहीं कहीं होटल में, कहीं शराब में, कुछ लोग पत्नी में बच्चे में अटक गए थे, वैसे ही इस संसार में लोग मनुष्य जीवन धारण करके, मनुष्य जीवन प्राप्त करने से पहले सब लोग जानते थे कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, परंतु जैसे ही व्यक्ति संसार के भोग को देखने लगता है तो इस संसार के भोग को देखकर वह उसमें मोहित हो जाता है और मोहित होकर फिर वह अपना लक्ष्य को भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान के पास जाना है, भूल जाता है और भूलकर अलग अलग भोगों में लग जाता है, धन कमाने में इत्यादि अलग अलग कार्य करने में वो व्यक्ति लग जाता है। और धीरे 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 उनके जीवन का समय समाप्त होते जाता है और समाप्त होते होते एक दिन ऐसा आता है कि वही भगवान काल के रूप में, मृत्यु के रूप में आते हैं और उस व्यक्ति को यहां से उड़ा देते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सार ग्रहण करना है, मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमारा एक ही कार्य होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करना। और यदि भगवान की प्राप्ति करने में इस मनुष्य जीवन में हम अन्य अन्य भोगों में फंस जाएंगे तो हम हमारे लक्ष्य को चूक जाएंगे। यदि परम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इस संसार के भोगों की ओर दृष्टि हटाकर भगवान की ओर दृष्टि करनी चाहिए। और भगवान की ओर दृष्टि करने का अर्थ है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान की भक्ति एकदम आसान है, भक्ति करना सबसे आसान कार्य है, पैसे कमाना बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किली वाला कार्य है, और जितने जितने काम है उसमें बहुत मुश्किली हो सकती है, परंतु भक्ति करना बहुत आसान है। क्योंकि भक्ति जो है जीव का स्वाभाविक धर्म है, आत्मा का सनातन धर्म है परमात्मा की सेवा करना। तो भक्ति सब लोग कर सकते हैं, छोटा सा बालक से लेकर बूढ़ा तक, मरणासन व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, क्योंकि भक्ति का अर्थ और कोई नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये भक्ति है। इसके बाद आप सब लोग अपने अपने घर जाकर भगवान के नाम का जप करोगे, यह भक्ति है। बताइए इसमें कौन सा बड़ा कष्ट है? कथा सुनना भक्ति है, भगवान का नाम लेना भक्ति है। और यदि हम यह करते रहेंगे, यदि हम जीवन भर यह करते रहेंगे तो अंत समय में भगवान का दर्शन होगा और साक्षात भगवान हमें लेने के लिए आएंगे और भगवान हमें अपने धाम में लेकर जाएंगे और अपने जैसा रूप प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा। यदि हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि हम सुखी होना चाहते हैं, परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हम सबको भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करना, भगवान को भोग लगाना और भगवान की कथा सुनना और भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए। और भगवान का नाम आसान है, हरे कृष्णा
राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो हम सबको इस प्रकार से मां मंत्र का जप करना चाहिए, निरंतर भगवान का दर्शन करना चाहिए। मैंने सुना है यहाँ पर इसी एरिया में प्राय 80% लोग यहाँ पर रहते हैं, परंतु इसमें से आधे लोग भी मंदिर में नहीं आते हैं। क्यों भाई, भगवान से दुश्मनी है आपकी? भगवान, हम लोग कई लोग माहिम से आते हैं, बांद्रा से आते हैं, बोरीवली से यहाँ मीरा रोड में दर्शन करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग यहीं पर रहते हैं और मंदिर में नहीं आते हैं। अरे भगवान का दर्शन करते हैं तो हमारा दिन अच्छा जाता है, हमारा जीवन सुधर जाता है। और महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया है कि 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेघ करने वाला फिर से माँ के गर्भ में आकर फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस जाता है, परंतु एक बार भी कोई कृष्ण को प्रणाम कर देता है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, वह फिर से कभी इस भौतिक जगत के दुखालय में नहीं आता है, वे भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। एक बार भी यदि कोई भगवान को प्रणाम कर दे तो इतना फल है, आप तो रोज भगवान को प्रणाम कर सकते हो। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रतिदिन भगवान के राधा गिरधारी मंदिर में जाए, प्रणाम करे, भगवान के नाम का जप करे। और यहाँ पर प्रति शनिवार को हिज ग्रेस जिग्नेश प्रभु आते हैं और आपको प्रवचन सुनाते हैं, तो आप सब भक्तों को चाहिए कि जिग्नेश प्रभु को फॉलो करें, जिग्नेश प्रभु की सारी बातों को माने, और वे जो भी उपदेश देते हैं, वे जो भी प्रवचन में कहते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारें, और उससे हमारा जीवन सार्थक होगा, उससे हमारा जीवन धन्य होगा, क्योंकि वे जो भी बोलते हैं भागवत गीता और प्रभुपाद जी के शब्द